ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्साहूणम् ईसु पञ्चणमो यारो सव पाव पणासनो मंगलानं च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलं चत्तारि मंगलं अरहंत मंगलं सिद्ध मंगलं साहु मंगलं केवली पन्नतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहंत शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल वायु सुगंध समेत मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली भजले अरिहंत अरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली सम्यक दृष्टि के जीवन में कदाचित साकांक्ष भक्ति अर्थात सकाम भक्ति भी घटित होती है। विशेष परिस्थितियों में ऐसा होता है। तो जब वो हताश हो जाता है, कर्मों की मार उसको तोड़ने के लिए तत्पर हो जाती है और कर्मों के उस वार को वो सहन नहीं कर पाता, तब वो प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, अब आप ही मेरी शरण है, रक्षा कीजिए, कुछ भी कीजिए, अब मेरी नैया आपके हाथों में। ये स्थिति बनती है। दुख से घबराने की बात नहीं है, सहन शक्ति पर्यंत दुखों में समता रखते हुए भी जब वो थ्रेशोल्ड वो सीमा रेखा पार होने लगती है, तब अच्छी अच्छी मीठी मीठी तत्व चर्चा करने वाले, आध्यात्मिक वार्ताएं करने वाले भी, शास्त्रों का गणित समझाने वाले भी लड़खड़ाने लग जाते हैं। बड़े बड़े धीर वीर महापुरुष भी तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी भावलिंगी मुनिराज भी उन स्थितियों में आर्त ध्यान को प्राप्त हो जाते हैं। व्यथा से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे वृत्तांत शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं। जिनमें से कुछ वृत्तांत यहां पर प्रस्तुत किए जा चुके हैं कि जब धर्म घोष मुनिराज और धर्म कीर्ति मुनिराज को उष्ण वेदना, तृषा वेदना सहन नहीं हो पा रही थी, तब एक देवी को उनका स्थितिकरण करना पड़ा। और स्थितिकरण होने के बाद वो निर्मल हो गए। अब यहां पर स्थितिकरण का अभिप्राय ये नहीं लेना कि वो अपने साधुत्व से नीचे गिर गए थे, ऐसा नहीं है। वो साधुत्व से अपतित थे, तभी तो उन्होंने देवी के हाथ का जल स्वीकार नहीं किया। प्यास सहन नहीं हो रही है, गर्मी सहन नहीं हो रही है, लेकिन तब भी प्रतिकार स्वीकार नहीं किया उन्होंने। और वो भी उनकी जो मर्यादा थी साधुत्व की, उसका ध्यान रखते हुए उन्होंने अस्वीकार किया। तब देवी ने सीमंदर भगवान से जाकर के समाधान निकाला। और फिर जब यहां सब कुछ ठीक हो गया तो मुनिराज तो मूर्छित हो गए थे। एक महीने का उपवास था और इतनी दूर आहारचर्या को निकले, तेज धूप थी, भूख प्यास उष्णता, साथ में सारे परिषद थे, असाता वेदनीय का भी प्रचंड उदय था। वो गंगा तट पर आकर के वृक्ष के तले स्थित हो गए थे। फिर जब वेदना अत्यधिक बढ़ गई, तब देवी ने उनका उपचार करना चाहा, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। देवी चली गई और ये यहां पर मूर्छित जैसे पड़े रहे। और चूंकि 12 वर्ष तक गुरु चरणों में इन्होंने स्वाध्याय किया था और फिर विचरण करते हुए, धर्म प्रभावना करते हुए वो चले आ रहे थे, तो इतने काल में उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे साधनाओं के। और प्रयोग करने के कारण वो अनुभवी साधक थे। और अनुभवी साधक चाहे जागृत हो, चाहे सुषुप्त हो, चाहे मूर्छित हो, उसके अंदर की धारा समाप्त नहीं होती। कोमा में भी ऐसे अंगूठा उंगलियों के पर्व पर देखा जाता है, जिन्होंने नमोकार मंत्र की बहुत प्रगाढ़ आराधना की हो, एक 9 महीने की आराधना होती है, वो आराधना जिन्होंने की है, तो मूर्छित होने के बाद भी उनके अंदर नमोकार मंत्र चलता रहता है। तो मुनिराज उस समय मुनिराज थे, पर गुणस्थानों में मुनिराजों का वर्णन जानने बिना अपने को लगता है कि देखो इनको कष्ट सहन नहीं हुआ। कुछ लोग यहां तक कह देते हैं कि दीक्षा क्यों ली, अगर सहन शक्ति नहीं थी तो दीक्षा क्यों ली। पर ऐसा नहीं है, सहन शक्ति तो बहुत थी उनमें, वरना यहां तक नहीं पहुंच सकते थे। एक महीने का उपवास नहीं कर सकते थे और वो पानी को नहीं नकार सकते थे जो देवी लाकर के दे रही थी श्राविका का रूप बनाकर। बहुत सहन शक्ति थी, पर एक सीमा रेखा होती है, उसी की बात कर रहे हैं थ्रेशोल्ड की, कि उस सीमा रेखा के बाद आखिर क्षयोपशमिक भाव ही तो है ना संसारी जीव में, क्षायिक भाव तो केवल ही भगवान के पास है। और फिर सारे साधु रिद्धिधारी नहीं होते, कुछ ऐसे साधु हैं जो रिद्धियों के बल पर क्लेशों को जीत लेते हैं, परीक्षाओं के कष्ट को जीत लेते हैं, लेकिन जो रिद्धिधारी नहीं है उनको तो क्लेश हो जाता है। तो ये छठे गुण स्थान में भी आर्त ध्यान का अस्तित्व आगम सिद्ध है, तो उनको भी जब उपचार मिला तब वो ध्यानस्थ होकर अरहंत और सिद्ध पद को प्राप्त हुए। जब मुनिराजों के साथ ऐसी स्थिति होती है तब जो अन्य सामान्य, वो भी चतुर्थकालीन तद्भव मोक्षगामी मुनिराजों की बात है, फिर पंचम काल के मुनियों की क्या दशा होगी सोचो, जिन्होंने बड़े बड़े कष्टों को सहन किया है वो वस्तुतः धन्य है, प्रणम्य है, अविस्मरणीय है, लेकिन अपन सबसे अपेक्षा नहीं कर सकते। पुलाक मुनि की परिभाषा बताई है शास्त्रों में कि जो कष्टों को सहन करने में पीछे रहते हैं लेकिन तो भी भावलिंगी होते हैं। बहुत सारी बातें साधुओं के विषय में तो बड़ा विस्तार है, अभी तो अपन अरहंतों की चर्चा कर रहे थे। तो अरहंतों की बात आती है तो वहां पर जब आप अरहंतों की भक्ति करते हैं तो कभी कभी निष्काम कभी सकाम भक्ति भी होती है, विशिष्ट परिस्थितियों में सकाम भक्ति भी सम्यक दृष्टियों द्वारा की गई है, ऐसा शास्त्रों में कथन है। और कई बार साधुओं में भी अपने पूर्वकालीन परिचितों के प्रति अनुराग पाया जाता है और वो साधु संभव है तद्भव मोक्षगामी हो। उदाहरण के लिए स्वयं बुद्ध मंत्री का जीव जब अपने अंतिम पर्याय में प्रीतिंकर मुनिराज की अवस्था में था तब वो प्रीतिंकर मुनिराज अवधि ज्ञानी चरण रिद्धिधारी थे, उनको ऐसा लगा कि हमारे उस भव में मैं तो मंत्री था और हमारे एक राजा भी था, उनको मैं बहुत संबोधित करता था वो मानते ही नहीं थे, फिर अंत में उनने मेरी बात मान ली थी, वो इस समय कहाँ है। तो अवधि ज्ञान से पता चलता है कि भोग भूमि में है। फिर अवधि ज्ञान से यह भी पता चलता है कि भोग भूमि में तो है परंतु अभी भी उनमें तत्वार्थ श्रद्धा नहीं है, तो वो मुनिराज कर्म भूमि से भोग भूमि की ओर आकाश मार्ग से जाकर राजा के जीव को संबोधित करते हैं और संबोधित करने पर राजा और रानी दोनों के जीवों को सम्यक दर्शन होता है। और उसके बाद फिर वो जो जीव था राजा का, जो वस्तु था उस भव में, अनेक भव पुरानी बात है, महाबल नाम का राजा था, फिर देवगति को प्राप्त हुआ, अंत में उसने 8 दिन पूजा की उपवास के साथ, 22 दिन फिर उपवास कंप्लीट रखा उन्होंने, 1 महीने का उपवास किया और अंत में देवगति में जाकर के उत्पन्न हुए। और देवगति में उनकी जो अंतिम देवी थी, जब उनकी आयु पूर्ण होने को थी तब जो अंतिम देवी मिली थी उनको, वो ललितांग देव बने थे और ये स्वयं प्रभा नाम की देवी मिली थी उनको। तो ललितांग देव की आयु स्वयं प्रभा से पहले समाप्त हो गई, तो स्वयं प्रभा विरह वेदना में व्यथित रहने लगी, पर जब उसकी माला भी मुरझा गई, तीर्थंकर के जो जीव होते हैं उन्हीं की माला नहीं मुरझाती, शेष सबकी माला मुरझा जाती है। आयु के 6 माह अवशिष्ट रहने पर सभी देवों की मालाएं मुरझा जाती है। तो एक तो देव के वियोग की व्यथा और एक मृत्यु की समीपता, दोनों स्थितियों का उसने सामना किया और फिर उनको दूसरे बड़े देवों ने आकर के समझाया कि आर्त ध्यान करके अपनी गति मत बिगाड़ो, नमोकार की आराधना करो, सम्यक दर्शन तो अति दुर्लभ है, तुम जैसी हो वैसी ही तुम परमेष्ठियों की भक्ति करो। उसने वैसे ही किया और एक वृक्ष के नीचे, वहां पर एक कई वृक्ष होते हैं नंदनवन वगैरह, बहुत सारी रचनाएं होती है वहां पर, अकृत्रिम उद्यान आदि होते हैं देवलोक में। तो वहां पर उसने एक वृक्ष के नीचे महामंत्र का स्मरण करते हुए अपनी आयु पूर्ण की और आयु पूर्ण करके चक्रवर्ती की पुत्री बनी। देखो स्त्री पर्याय सरलता से नहीं छूटती। काल प्ररूपणा में षटखंडागम के अंदर आचार्य पुष्पदंत भूतबलि मुनिराज लिखते हैं, उक्कसेण पलिदोवम सद पुधत्तम। स्त्री वेद की जो अधिकतम सीमा है, कितने समय तक ये जीव लगातार स्त्री वेद में भव भवांतरों में भटक सकता है, तो उसमें लिखा है पलिदोवम सद पुधत्तम। कुछ कम 900 पल्ल तक स्त्री वेद में ये जीव भटकता है। अगर स्त्री वेद छूट जाए तो अच्छी बात है, न छूटे तो लगातार अगर स्त्री वेद बना रहे तो लगभग 900 पल्ल तक इस जीव को संसार में भटकना पड़ता है और बार बार स्त्री वेद के साथ इसको प्रायः करके स्त्री पर्याय ही प्राप्त होती है। कहीं विषमा, कहीं उसको कभी स्त्री वेद के साथ भी शरीर पुरुष का मिल जाए, ऐसे अपवाद होते हैं बहुत कम। पर उस जीव की नमोकार ने शुरुआत तो कर दी थी। भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि भले ही उसको सम्यक दर्शन न हो, पर उन्होंने ये लिखा है कि उपचार से, अपन अभी नए लगा रहे हैं अपन, उसका समाधि मरण हुआ था उस देवी का, उसने किसी भी अन्य देव को वहां स्वीकार नहीं किया था। देखो देवगति के नियम अलग है, भोग भूमि के नियम अलग है और यहां पर कर्म भूमि के नियम अलग है। भोग भूमि के नियम को आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा और देवगति के नियम को सुनेंगे तो आपको और अजीब लगेगा, पर यहां कर्म भूमि में अपन जिससे, जिस वातावरण से अपन परिचित है उस हिसाब से अपने संस्कार बने हुए हैं। देवगति में विवाह नहीं होता, परंतु जो नियोगिनी देवी होती है उसको उस देव की पत्नी के रूप में ग्रहण किया जाता है। नियोगिनी देवी मान लो सामानिक देव की पर्याय या फिर लोकपाल देव की पर्याय एक देव को प्राप्त हो रही है, तो फिर उसके विमान में उस देव का नियोग लेकर वैसे कर्मों के उदय के साथ जन्मी हुई जो भी देवी है वो देव उसका स्वामी होगा, भले वो देवी उस देव से पहले जन्मी हो। और उस देव से पहले वाले देव की देवी रह चुकी हो, ये नियोग की बात है। मनुष्य लोक में ऐसा है कि यहां पर धर्म मार्ग की अपेक्षा से देखा जाए तो कन्या का ही विवाह होता है, और कन्या का विवाह होता है ये सर्वशास्त्र सम्मत सत्य है, तथ्य है। इस पर आप और सूक्ष्मता से विचार कर सकते हैं, क्योंकि इतना ही कथन पर्याप्त है जो संकेत से समझने वाले हैं उनके लिए। वहां पर चूंकि विवाह का संबंध नहीं है, वो एक नियोग का संबंध है, इसलिए उसको अपन कोई अनिष्ट विशेषण नहीं दे सकते उस देवी को। क्योंकि वो उस जीव से नहीं जुड़ी है, उस पद से जुड़ी है। ये अंतर है। भोग भूमि में क्या होता है? भोग भूमि में ऐसा एक वहां का भी एक नियोग है। वो क्या नियोग है? कि वहां पर माता पिता संतान के उत्पन्न होने पर तत्काल मरण को प्राप्त हो जाते हैं। और संतान हमेशा युगल रूप में उत्पन्न होती है, और युगल रूप में उत्पन्न होने पर भी उनमें एक पुरुष और एक स्त्री, इस प्रकार से उनका जन्म होता है। बाल्यकाल में बच्चा और बच्ची, और कालांतर में वो ही युगल हो जाते हैं, वही जोड़े हो जाते हैं, और उनकी जो संतान होती है जैसे ही जन्म लेती है इनका मरण हो जाता है। तो आप अगर कर्मभूमि के संबंधों की अपेक्षा से विचार करोगे तो भाई बहन हो गए, और देवलोक के बारे में देवी का विचार करोगे तो फिर आपको ये लगेगा कि अरे वो तो पर पुरुष का संबंध करने वाली देवी, वो तो अशुद्ध है। फिर एक प्रश्न ये भी आता है यहां पर कर्मभूमि में कि पुरुष पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार देखें तो पुरुष के कितने विवाह होते थे, लेकिन नारी अगर दूसरा विवाह कर ले तो फिर वो दूषित मानी जाती है, क्या कारण है? तो यह प्रश्न गणनी आर्य का सुपार्श्वती माताजी के समक्ष भी आया था, तो फिर उसका उत्तर ये था। माताजी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था, पर हम उनकी भाषा में न बोल करके हम शास्त्रों के शब्दों में आपके सामने रखते हैं कि उसका अभिप्राय ये था कि पुरुष और नारी में जब विवाह संबंध होता है तो पुरुष को प्रदान करने वाला माना गया है और नारी को आधान करने वाली माना गया है। आधान नारी में होता है, प्रदान पुरुष द्वारा होता है। तो आधान होने पर वो संबंध भिन्न श्रेणी का होता है और प्रदान में भिन्न प्रकार का होता है। ये सब शास्त्रों की भाषा है। आदान नहीं कह रहे हैं, आधान कह रहे हैं। आधान का अर्थ होता है धारण करना, और धारण किए बिना संतान नहीं हो सकती। महापुराण आदि में ये सारा वर्णन आता है। तो इसलिए उसने धारण कर लिया तो अब पर संयोग उसके लिए दूषण माना गया है, और पुरुष के लिए अगर अविवाहिता या और किसी के साथ में संबंध होता है तो उसको भी सुशील नहीं माना जाता। संस्कार पूर्वक जो वैवाहिक संबंध हुए हैं तब उसको स्वीकार किया जाता है समाज में और शास्त्रों में भी। पर उल्लंघन तो सर्वत्र होता है। तो यहां पर अपन ये समझने जा रहे हैं कि जो सकाम भक्ति हो रही है वो अगर सम्यक दृष्टि जिन धर्म से जुड़े हुए, जिन शासन से जुड़े हुए देवों की वैसे आराधना करता है तो उसको सम्यक दर्शन का दोष बताया, सम्यक दर्शन का विनाश तो नहीं बताया, क्षायिक सम्यक दृष्टि तो नहीं करेगा वो कार्य, औपशमिक सम्यक दृष्टि भी नहीं करेगा, लेकिन क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जिसको वेदक सम्यक दृष्टि कहते हैं वो सम्यक तो प्रकृति के उदय में शासन देवताओं की आराधना लोभवश कदाचित कर सकता है, तो वो इसको इसका दोष माना जाएगा, दूषण माना जाएगा। शंका कांक्षा विचिकित्सा, ये जो अतिचार बताया ना, ये कांक्षा नाम का अतिचार माना जाएगा। यदि लोभवश शासन देवताओं, अब देखो अगर वो विद्या देवताओं की आराधना करता है, जैसे कल हमने बताया था कि इंद्र नाम का जो विद्याधर था उसकी इतनी विद्याएं थी उसके पास कि उसको कोई हरा नहीं सकता था, वो तो एक ऐसा पुण्यशाली जीव उत्पन्न हो गया रावण जिसका नाम था, रावण के अलावा उसको कोई जीत नहीं सकता था, रावण ने उसको जीता था। और बंदी बना लेने के बाद जब उसके पिता सहस्रार रावण के पास आए और रावण से कहा कि मेरे पुत्र को तुमने बंदी बनाया है, मैं निवेदन, अब रावण ने एकदम उनको रोक दिया कि आप हमारे तात हैं, आप हमारे सम्माननीय हैं, आप बिल्कुल हमसे कुछ भी मत कहिए, आदेश दीजिए, और आप न भी आते केवल एक संदेश भिजवा देते तो मैं सहर्ष इंद्र को छोड़ देता, ये मेरे विरुद्ध था तो फिर मैंने इसको बंदी बना लिया, ये तो युद्ध नीति थी, मेरी कोई शत्रुता तो है नहीं और मैं तो चाहता हूं कि वो आनंद पूर्वक राज्य करे, मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे केवल जीतना था, मेरा काम हो चुका है। इंद्र विद्याधर छूटने के बाद ऐसे सिर झुकाकर नजरें झुकाकर चल रहा था, जिसने जीवन में कभी पराजय का मुख न देखा हो, प्रथम पराजय के बाद उसकी क्या स्थिति होती है ये सबकी कल्पना में नहीं आ सकता ये विषय। तो इंद्र को वैराग्य हो गया, हो जाता है स्वाभिमान को ठेस लगने पर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और फिर इंद्र ने आत्मकल्याण किया। ऐसी ऐसी घटनाएं भी हुई है। तो उस विद्याधर ने कितनी विद्याएं सिद्ध की थी, क्या विद्याएं घर बैठे सिद्ध हो जाती है? 12-12 वर्ष तक एक बार भोजन करते हुए उस देवता को अपने अधीन किया जाता है, विद्या देवता को, जैसे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करनी है, कितनी कठिन विधि है उसकी, वर्षों तक साधना करके उस देवता को सिद्ध किया जाता है, और तब वो सेवा में आकर कहती है देवी आकाशगामिनी कि मुझे आदेश दीजिए कहां जाना चाहते हैं आप। सिद्ध हो जाने के बाद में वो अधीन हो जाती है, ना हो तब तक के आप नहीं चल सकते, आकाश में नहीं जा सकते। आकाशगामिनी रिद्धि जो रिद्धिधारी साधुओं को होती है वो अलग विषय है, उनको देवर्षि कहते हैं जिनके पास आकाशगामिनी रिद्धि होती है, आकाश चारण रिद्धि भी होती है वो भी अलग है, पर वो तो महामुनिराजों को होती है। अब यहां पर क्या करें, विद्याओं के बिना तो काम नहीं चल सकता ना विद्याधरों का। तो शुद्ध सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव भी उन विद्या देवताओं की आराधना करते हैं, वो विद्या देवता रागी हैं, सराग हैं, वो वीतराग नहीं है लेकिन देवगति के हैं। अगर वो सराग देवता अर्थात परमात्मा की आराधना करें तो सम्यक दर्शन दूषित हो जाएगा, कर ही नहीं सकता। पर ये देवगति के देव हैं, सराग हैं, इनकी आराधना करता है तो उसको सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो आराधना धर्माराधना की श्रेणी में नहीं है, वो आराधना विद्याराधना है। चक्रवर्ती को 32,000 मुकुटबद्ध राजा नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, तो चक्रवर्ती कोई देवशास्त्र गुरु है क्या? तो वो जो 32,000 मुकुटबद्ध राजा है वो सब मिथ्या दृष्टि है क्या? ये प्रश्न फिर उठेगा। नहीं, जो जैसा है उसको वैसा मानकर सम्मान देना मिथ्यात्व नहीं है। तो पूर्व सत्र में अपन ने समझा था, देवं जगत्त्रयी नेत्रं व्यंतराद्याश्च देवताः समं पूजा विधानेषु पश्यन् दूरं व्रजेदद। व्यंतरादिक जो देवता हैं, भगवान के सेवक हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सम्यक दृष्टि है उनको, और जो तीनों जगत के लिए नेत्र के समान साक्षात भगवान है उनको, दोनों को पूजा विधानेषु समं पश्यन्, पूजा के अनुष्ठानों में समान मानने वाला दूरम अधः व्रजेत, दूर नीचे जाता है। नीचे जाता है का अर्थ अधोगामी होता है, दुर्गति का पात्र होता है। इस श्लोक से यह सूचित हो रहा है, पूजा विधानेषु, ये जो शब्द है ये इस बात को प्रमाणित करता है कि पूजा के पात्र तो सब हैं। स्वामी स्वामी के योग्य पूजा के पात्र हैं, सेवक सेवक के योग्य पूजा के पात्र हैं, मंत्री भी जनता के तो सेवक होते हैं ना। तो मंत्री की पूजा होती है कि नहीं मंचों पर? सत्कार और पूजा का अर्थ आप समझ चुके हैं इतने दिनों में, होती है, लेकिन उनको देवशास्त्र गुरु मान करके नहीं पूजते, इसलिए उस पूजा में मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता, भले वो मंत्री सम्यक दृष्टि हो या ना हो। पर उसके योग्य जो उसका सम्मान है उसको अपन मिथ्यात्व नहीं कह सकते। इसी तरह यहां पर कह रहे हैं कि पूजा विधानोश विधानेश बहुवचन कह रहे हैं, तो पूजा के अनुष्ठानों में उनके पूजा अनुष्ठान अलग है, इनके अलग है, यह बात इससे स्पष्ट हो जाती है। समान माने तो मिथ्यात्व है। और फिर दूसरा क्या कहा था विकल्प? दूसरा विकल्प यह था कि अगर लोभ से उपासना करता है, वरदान पाने की इच्छा से उपासना करता है तो क्या होता है? मिथ्यात्व होता है। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, देव मूर्ता नाम का दोष लगता है। अब देव मूर्ता नाम का दोष किसको लगता है? सम्यक दृष्टि को। और कैसे सम्यक दृष्टि को? कौन से सम्यक दृष्टि को? तो जो क्षायिक नहीं है, जो औपशमिक नहीं है, बल्कि जो क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि है उसको ये दोष लगता है। दो श्रेणियां हो गई देवताओं की आराधना वाली, दो श्रेणियां हो गई। अब और देखिए, ताह शासनाधिरक्षार्थं कल्पिताह परमागमी अतो यज्ञांश दानीन माननीया सुदृष्टि भी। अब प्रश्न होता है कि उनका सम्मान क्यों करें? ना करें तो नहीं चलेगा क्या? बड़ा सुंदर प्रश्न है, पर इसका उत्तर आचार्य दे रहे हैं 241वें काव्य में, यशस् तिलक चंपू ग्रंथ के अष्टम आश्वास में, यानी आठवां जो अध्याय है उसमें आचार्य सोमदेव सूरी, बड़े भारी विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, वो आचार्य उसका समाधान दे रहे। प्रश्न क्या है एक बार ठीक से समझ लो, क्योंकि प्रश्न ठीक से नहीं समझ में आएगा तो और उत्तर सुनोगे तो आनंद नहीं आएगा। प्रश्न क्या था? कि अगर हम जिनेंद्र भगवान के शासन से जुड़े हुए देवताओं की आराधना न करें, हम उनकी उपासना न करें, हम उनका सत्कार सम्मान न करें, तो क्या हानि है? क्या उनका सम्मान जरूरी है? तो आचार्य महाराज ने क्या उत्तर दिया? परमागमे ताह शासनादि रक्षार्थं कल्पिताः। परमागम में अर्थात जिनेंद्र प्रणीत आगम में ताह शासन देवता, वे शासन देवता शासनाधिरक्षार्थं कल्पिताः, शासन की अधिरक्षा के लिए कल्पित अर्थात व्यवस्थित है। संस्कृत भाषा में कल्पित अर्थ का आपको स्मरण है? कल्पित का अर्थ क्या है? व्यवस्थित। पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति, क्या अर्थ है इसका? देवलोग भगवान के विहार के समय कमलों की कल्पना करते हैं, हिंदी वाला अर्थ लेंगे क्या? नहीं, परिकल्पयन्ति का अर्थ होता है व्यवस्थित कर देते हैं चरणों के नीचे। यहां पर भी परमागम में वे शासन देवता शासन की अधिरक्षा के लिए व्यवस्थित है। उनके जो इंद्र हैं, आप जानते हैं कौन से इंद्र हैं जो यक्ष यक्षियों को शासन की रक्षा के लिए नियुक्त करते हैं? कौन से इंद्र हैं वो? पूर्णभद्र और माणिभद्र। मणिभद्र नहीं, माणिभद्र। मणिभद्र क्षेत्रपाल देव हैं और माणिभद्र जो है वह इंद्र देव हैं यक्षों के। तो ये इंद्रों द्वारा आदेशित होकर इस कार्य में नियुक्त है। समवसरण में वे शासन देव और देवी दोनों होती हैं। देव भगवान के दाहिनी ओर होते हैं और देवी बाईं ओर होती है। आप देखिएगा कई चित्रों में आपको ये दृश्य देखने मिलेगा। यहां दक्षिण के जो मंदिर हैं वहां पर आप देखेंगे, इसे हम आपको एक चित्र दिखा रहे हैं। जैसे शेयर करने के लिए तो इस पर प्रतिबंध है, क्योंकि जहां से हमें यह चित्र प्राप्त हुआ है वो एक बहुत प्राचीन लॉकर में रखा हुआ एक रहस्यपूर्ण जिनालय है, वहां से प्राप्त ये चित्र है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, अत्यंत अद्भुत महावीर स्वामी का चित्र है। ये प्रतिमा है, दिख रहे हैं भगवान? अब ये इतने सुंदर हैं कि हम क्या बताएं आपको। यहां से जो ओरिजिनल फोटो है उसको देख कर तो आनंद आ जाता है। इसमें गुह्यक यक्ष और सिद्धायिनी यक्षी हैं और अच्छे सम्मानित आसन पर विराजमान है भगवान के पास में। दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं? और ये शास्त्रोक्त अरहंत प्रतिमा है। शास्त्र में अरहंत प्रतिमा का यही स्वरूप है, पूरे परिकर और वैभव के साथ। इसमें केवल कुछ क्या, भगवान के पास में लक्ष्मी सरस्वती सब होते हैं। शास्त्रों में जो वर्णन आता है अकृत्रिम चैतन्यों का, वहां पर ये सारा वर्णन आता है। तो देखिए बड़े सम्माननीय आसन पर वो विराजमान है। तिलोय पंडित्ती की गाथा में लिखा है, जिन पासे चिट्ठन्ते, वो भक्ति से परिपूर्ण होकर जिनेंद्र भगवान के पास में समव शरण में भगवान की गंध कुटी में भगवान के पास में चिट्ठन्ते विराजमान होते हैं, वो जिन शासन की रक्षा करते हैं लंबे समय तक, क्योंकि उनकी आयु जिनेंद्र भगवान से अधिक होती है। सभी तीर्थंकरों से अधिक आयु उनके शासन देवताओं की होती है। जिनेंद्र भगवान की आयु की अधिक से अधिक एक पूर्व कोटि हो सकती है और इनकी आयु तो एक पल्ले होती है, तो पल्ले की आयु तो बहुत बड़ी आयु है। तो परमागम में ये शासन के अधिरक्षक के रूप में व्यवस्थापित हैं। अतः आचार्य कह रहे हैं इसलिए सुदृष्टि भी, सम्यक दृष्टियों से कह रहे हैं, इसलिए सुदृष्टि भी माननीय, सम्यक दृष्टियों के द्वारा माननीय अर्थात सम्मान के योग्य हैं। न करे तो क्या होगा? तो आचार्य कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टियों के द्वारा सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि वो जिन शासन के अधिरक्षक हैं सम्मान के योग्य हैं। और कैसे सम्मान करना, ये प्रश्न था ना कि अपना कैसा बर्ताव होना चाहिए जिन भक्तों का उनके प्रति। हाथ जोड़कर जय जिनेंद्र कर लें या फिर नमोस्तु कर लें, क्या कर लें? तो यहां आचार्य कह रहे हैं यज्ञांश दाने न, यज्ञ पूजा क्रतु अर्चना, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है पूजा के। तो आचार्य कह रहे हैं यज्ञांश दाने न, यज्ञांश के दो अर्थ है ना। एक अर्थ तो ये होगा कि आपने जिनेंद्र भगवान की जो पूजा की है उसमें से जो अंश अवशिष्ट रह गया थाली में वो इनको प्रदान करके सम्मानित करें। और वस्तुतः देखा जाए तो जो भगवान की पूजा के द्रव्य होते हैं उनको पहले अभिमंत्रित किया जाता है और उन द्रव्यों को भगवान की पूजा के योग्य बनाया जाता है, एक प्रक्रिया है उसकी। ऐसा नहीं कि आपने चावल मुट्ठी भर कहीं से भी उठाया और फिर आकर भगवान को चढ़ा दिया और वो हो गया, पूजा का द्रव्य हो गया, अक्षत हो गया, ऐसा नहीं। उसकी एक पूरी विधि है और उस विधि के बाद वो द्रव्य जो है वो जिन पूजा के द्रव्य हो गए, और जिन पूजा हो गई और कुछ द्रव्य शेष रह गए तो वो जो शेष द्रव्य है वो अत्यंत सम्मान योग्य है। आप अगर वरांग चरित्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूजा के द्रव्यों को भी ऐसे सिर पर उठाकर जुलूस में ले जाते हैं मंदिर और फिर उन द्रव्यों से बड़ी भव्य पूजा होती है भगवान की। और यहां श्रवण बेलगोल में तो अभी भी होता है, क्या भव्यता के साथ पूरे धूमधाम के साथ गाजे बाजों के साथ वो द्रव्य ले जाए जाते हैं। तो वो जो पूजा का अंश है वो इनको प्रदान करना और इनका सम्मान करना, एक ये हो गया। दूसरा यज्ञांश का अर्थ, यज्ञ का अर्थ पूजा और उसका अंश यानी उसके द्रव्य, पूजा के द्रव्य पूजा के अंश हैं, वो प्रदान करके भी इनका सम्मान करने योग्य है। लेकिन इनको सम्मान करते समय आप जल गंध अक्षत आदि जो भी हैं द्रव्य, इसमें आप मोक्ष पद की कामना नहीं करेंगे और सांसारिक वस्तुओं की भी कामना नहीं करेंगे। तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि जब मोक्ष की भी कामना नहीं करना और सांसारिक वस्तुओं की भी कामना नहीं करना है तो फिर हम करें क्यों ऐसा उपक्रम? तो उसका उत्तर है रत्नकरण शावकाचार्य ग्रंथ में समंतभद्र आचार्य महाराज ने लिखा है, स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। अपने समूह वालों के प्रति, एक तो परमेष्ठियों का समूह है वो अपने उपास्यों का समूह कहलाता है और दूसरा अपना समूह है जो उपासकों का समूह कहलाता है। दो समूह स्पष्ट समझ में आ रहे हैं ना आपको, एक उपास्यों का समूह है जिनकी अपन उपासना कर रहे हैं और दूसरा उपास्यों के समूह के अतिरिक्त दूसरा जो समूह है वो उपासकों का समूह है। जिनके द्वारा उपास्य की उपासना की जाती है वो उपासक कहलाते हैं। तो अपने समूह में कौन कौन है? केवल अपने समाज के लोग हैं क्या? परिवार समाज वाले बोलेंगे कि हमारे परिवार लोग हैं, खंडेलवाल वाले बोलेंगे हमारे खंडेलवाल लोग हैं, ऐसा है क्या? शास्त्रों में ऐसा आया कहीं? नहीं। जितने भी जिन भक्त हैं वे सब उपासक के समूह में सम्मिलित होते हैं। यहां तक सबको स्पष्ट आ रहा है समझ में कि सारे जिन भक्त? अब जब अपन ने जातियों के विभाग को दूर कर दिया, सब एक साथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और देखो, जिनके अंदर भक्ति का भाव होता है, जो अभिमान के चक्कर में नहीं पड़ते, वो कभी परवाह नहीं करते कि मेरे बगल में पूजा करने वाला कौन बैठा हुआ है। उसको लगता है कि वो भी भगवान की पूजा कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं। वो ये भी नहीं देखते कि उसकी थाली में क्या है, मेरी थाली में क्या है। क्यों तुलना करें? और तुलना करके क्यों अपना मन खराब करें? जिसकी जैसी क्षमता है, जिसकी जैसी भावना है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, वो भगवान की भक्ति कर रहा है अपने अपने क्रम से। तो अपन सब एक समूह वाले हैं। जिन भक्तों के समूह में दरार डालने वाला, दीवारें खड़ी करने वाला, एकता को खंडित करने वाला जिन भक्त कैसे हो सकता है? यहां तो देखो, तिर्यंच भी, अभी हम लोग एक कन्नड़ का ग्रंथ पढ़ रहे थे, उसमें एक कथानक था। उस कथानक में एक हाथी सरोवर में जाकर के वहां से एक कमल का फूल तोड़ता है और बाहर निकल करके मुनिराज के चरणों में अर्पित कर देता है। और मुक्तागिरी की एक सत्य घटना है कि जो संभवतः 44 नंबर जिनालय है वहां पर पहाड़ पे, वहां पर त्रिमूर्ति भगवान है। हमें वहां के एक सुनील पुजारी थे पहले, अभी तो वो अन्यत्र हैं, बांसुरी वगैरह बजाया करते थे, उनका बच्चा तबला बजाता था। सैतवाल जैन समाज के थे, वो जैन थे। उन्होंने एक घटना सुनाई थी कि इस जिनालय में एक दिन एक काले मुंह वाला बंदर आया और उसने बीच वाले भगवान के चरणों पर अपना सिर रखा और दोनों भगवान के पैर पर अपने दो हाथ रख दिए और वहीं उसकी आयु पूरी हो गई। क्या इस घटना की प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास? क्या उनको आप जिन भक्त नहीं मानेंगे? क्या सिर्फ जो बड़ी बोलियां ले सकते हैं वही जिन भक्त हैं? नहीं। आप स्मरण कीजिए उन दो बालकों का, देवपत और खेवपत का। क्या वो जिन भक्त नहीं थे? तो आप किसी जिन भक्त को पृथक कैसे कर सकते हैं जिन भक्तों के समूह से? चाहे वो देव हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे मनुष्य हो, अपन सब एक हैं। और एकता के विरुद्ध किसी की बुद्धि को कोई प्रेरित करे तो यदि वो बुद्धिमान है तो प्रभावित न हो उसके तर्कों से, उसकी बातों से, और अपना वात्सल्य, अपना स्नेह, धर्म स्नेह अखंड रखें। ये धर्म पंचम काल के अंत तक चलेगा और चलाने वाली जो एक शक्ति है उसका नाम है वात्सल्य। उसकी रक्षा करनी होगी। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, स्वयूथ्यान प्रति, अपने समूह वालों के प्रति अर्थात जितने भी जिन भक्त हैं उनके प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा, निर्मल भावनाओं के साथ कपट से रहित जो जिन भक्तों में परस्पर समुचित अवसर आने पर पूजा प्रशंसा का बर्ताव किया जाता है, प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। स्नेह तो अटूट है लेकिन कभी कभी वो सम्मान भी किया जाता है, कभी आपका सम्मान वो करेंगे, कभी आप उनका सम्मान करेंगे, ऐसी स्थितियां भी होती है। देखो जो लोग उपवास करते हैं उनको रथ पर बैठाकर जुलूस निकाला जाता है कि नहीं, फिर जब वो उपवास नहीं करते तब वो दूसरे जो उपवास करने वाले हैं उनके जुलूस में चलते हैं कि नहीं, रथ के साथ नीचे नीचे। ये इसका नाम वात्सल्य, इसका नाम यहां पर संबंध भद्र स्वामी कहते हैं कि सब धर्मात्माओं के प्रति, सब जिन भक्तों के प्रति ये बर्ताव रखना है। तो जो शासन देवता हैं, जो जिन शासन के अधिरक्षक हैं, समावसरण के देव हैं, वे सम्यक दृष्टि देव हैं और वे जिन भक्त हैं, तो उनके प्रति अगर आप कुछ भेंट अर्पित करके उनको सम्मानित कर देंगे तो सम्यक दृष्टियों के लिए तो आचार्य कह रहे हैं कि वो सम्माननीय है, मिथ्या दृष्टियों के लिए भले अपमाननीय हो लेकिन सम्यक दृष्टियों के लिए वो सम्माननीय है। और जो सम्माननीय है उसको कुछ भेंट पड़ान चढ़ाने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। अभी तो धारणाएं ऐसी बनी कि कोई सामने खड़ा हो उनके, हमने पहले भी कहा था ये उदाहरण दिया था कि कोई अगर पद्मावती देवी के सामने खड़ा हो गया तो जिसके मन में वो प्रदूषण भरा हुआ है उसको लगेगा मिथ्या दृष्टि, भले वो खुद अभव्य भी हो तो भी वो सामने वाले को मिथ्या दृष्टि और खुद को सम्यक दृष्टि समझता है। तो ऐसा नहीं करना अपने को, ये धर्म वात्सल्य है और आप उनको भगवान नहीं बना रहे हो, उनको उनके योग्य सम्मान प्रदान कर रहे हो, तो ये वात्सल्य पूर्वक भी उनकी आराधना उनकी अर्चना की जा सकती है। अर्चना का अर्थ वही है पूजा, जो मोक्ष विनय के अंतर्गत तो नहीं लेकिन इस रूप में है। और कथनचित इसको मोक्ष विनय में इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि ये वो जिन शासन के रक्षक है इसलिए आप उनको स्पेशली वो दे रहे हैं, मात्र सम्यक दृष्टि है इसलिए नहीं, मात्र सम्यक दृष्टि है इस अपेक्षा से अगर विचार करोगे तो सौधर्म इंद्र से लेकर सर्वार्थ सिद्धि के जो देव हैं वो सब उस सम्यक दृष्टि के सम्मान के पात्र तो हैं, उसमें तो आपत्ति है ही नहीं, पर ये शासन के अधिरक्षक के रूप में सम्माननीय है इसलिए ये स्पेशल सम्मान हो गया, स्पेशल सत्कार हो गया, स्पेशल पूजा हो गई। तो इसलिए ये मात्र लौकिक विनय नहीं है, इसमें कुछ धर्म का भी संबंध जुड़ा हुआ है। ठीक है, तीन श्रेणियां हो गई, पहली श्रेणी समान मान करके कर रहे हो, दूसरी श्रेणी लोभ से कर रहे हो, तीसरी श्रेणी वात्सल्य से कर रहे हो, चौथी श्रेणी जो है वो संकट निवारण की स्थिति में भी कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि संकट आ गया अपने ऊपर, अपने अंदर कोई लोभ नहीं है, लालच नहीं है, कुछ अपन मांग नहीं रहे उनसे, लेकिन अपन ये जानते हैं कि देवों में शक्ति होती है, संकट का निवारण कर सकते हैं वो, तो ऐसी स्थिति में आप उनके पास जाकर उनकी आराधना कर लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरे संकट का निवारण करो। तो इस विषय में शास्त्रों का क्या कथन है, ये चौथी श्रेणी भी शास्त्रों में बताई हुई श्रेणी है। यहां जितनी भी श्रेणियां हम आपके सामने बता रहे हैं वो श्लोक पढ़ करके शास्त्रों से ही आपके सामने बता रहे हैं, एक एक बात हम आपके सामने श्लोक पढ़ करके रख रहे हैं। देखिए इसके विषय में क्या लिखा है, वो श्लोक पहली प्रतिमा के वर्णन में एक पंक्ति आई है, एक बहुत बड़े विद्वान गृहस्थाचार्य थे वो, गृहस्थों के विवाह आदि की व्यवस्था करने वाले, उनको धार्मिक मार्गदर्शन देने वाले और अन्य भी अनेक अनुष्ठान कराने वाले गृहस्थाचार्य कहलाते थे पहले तो। आशाधर सूरी जी उनका नाम था, बघेरवाल समाज के थे। उन्होंने पहली प्रतिमा के स्वरूप में लिखा है, पहले तो श्लोक लिखा, फिर उसकी व्याख्या उन्होंने स्वयं लिखी। उसमें वो लिखते हैं, दर्शन का श्रावक, पहली प्रतिमाधारी जो श्रावक है वह स्वविपत्ति निवृत्त्यर्थम शासन देवतादीन न भजते। अपने संकट का निवारण करने के लिए शासन देवता आदि को नहीं भजता, अर्थात संकट निवारण के लिए भी शासन देवताओं को लोग भजते हैं, प्रतिमाधारी नहीं भजता, ये कह रहे हैं। और इस कथन की पुष्टि रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी हो रही है। पहली प्रतिमा का वर्णन करते हुए समंत भद्राचार्य महाराज लिख रहे हैं, पंच गुरु चरण शरण, संकट के समय प्रतिमाधारी पांच गुरुओं के चरणों की शरण को ही प्राप्त होगा, जैन धर्म के देवों को नहीं पुकारेगा कि मेरे संकट का निवारण करो। और यदि किसी अन्य धर्मात्मा पर संकट आया हो तो प्रतिमाधारी भी जैन धर्म के देवताओं को निवेदन कर सकता है। प्रतिमाधारी भी, और प्रतिमाधारी कौन, मिथ्या दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि। गुम्मटसार जीव कांड में भी यही बात आई है, जीणे कमई, पंचम गुणस्थान हुआ तो जिनैक मति ही ये संज्ञा मिली उसको, चौथे गुणस्थान तक जिनैक मति संज्ञा नहीं थी, क्योंकि संकट निवारण की वेला में चौथे गुणस्थान वर्ती जिसके पास अणुव्रत नहीं थे वह इन देवताओं के पास रक्षा की पुकार कर लेता था। अब जैसे अणुव्रति हो गया तो फिर वो देवताओं से रक्षा की पुकार नहीं करता, वो पंच परमेश्वरों से ही रक्षा की पुकार करता है। ये एक महत्वपूर्ण आगमिक तथ्य है, आप तत्काल इसको स्वीकार भी मत करना और तत्काल इसको नकारना भी मत, आप इस पर विचार करना, और जो बात यहां कही जा रही है उस पर आप विचार करके फिर समझना कि क्या कही जा रही बात। ये चौथी श्रेणी है कि जो लोग प्रतिमाधारी नहीं है वो संकट निवारण के लिए इनकी आराधना कर लेते हैं। और अंतिम श्रेणी जो है वो ये है कि इनको भगवान का वैभव मानकर, भगवान के साथ ही वैभव सहित भगवान की जब आराधना करते हैं तो इन सब की आराधना एक साथ होती है। और कभी कभी अलग अलग आराधना भी की जा सकती है, जैसे मानतुंग आचार्य महाराज ने भगवान के आसन की पूजा की बात की है। अब आसन की पूजा भगवान का वैभव है, आसन क्या है, पैरों की जो चौकी है भगवान की वो भगवान का वैभव है, पर उसकी पूजा करते हैं देवलोग। और कौन से देव करेंगे पूजा, अरे जो लोग वहां पहुंच पाएंगे वही करेंगे ना। तो समव शरण में भगवान जिस पर पैर रखकर सिंहासन पर चढ़ते हैं वो जो पैर की चौकी है भले छूते नहीं है, आपकी बुद्धि वहां भी जा रही है हमें पता है छूते नहीं है वो बात अलग है, लेकिन पैर रखकर उस पर जाते हैं ना सिंहासन पर, ऐसे सीधा सिंहासन पर थोड़ी चले जाते हैं। तो वो जो पादपीठ है विबुधार्चित पादपीठ है, और आचार्य मानतुंग स्वामी ने ये विशेषण भगवान के लिए दिया है, ये विशेषण एक गौरवपूर्ण विशेषण है, ये कोई हल्का फुल्का विशेषण नहीं है कि देवों के द्वारा अर्चित है चरणों की चौकी जिनकी, ऐसे हे आदि जिनेन्द्र। तो जब चरणों की चौकी देवों के द्वारा अर्चित है तो सिंहासन क्या अपूज्य होगा? भगवान का अभिषेक करते समय सिंहासन से कई बार भगवान को उठाकर अभिषेक पीठ पर विराजमान करते हैं और फिर अभिषेक करते हैं, उस सिंहासन को कभी धरती पर नहीं रखना, क्योंकि वो सिंहासन अपूज्य नहीं है, उसको अच्छे स्थान पर रखना। इसी तरह अगर सिंहासन पूज्य है और दिव्य ध्वनि तो पूज्य है ही है, जिनेन्द्र भगवान की साक्षात वाणी है, तो फिर बाकी छह प्रातिहार्य क्या अपूज्य हो जाएंगे? जब भगवान के दो प्रातिहार्य पूज्य है तो बाकी छह कैसे अपूज्य हो सकते हैं? और बाकी प्रातिहार्यों में भी आप विचार कीजिए, कुछ प्रातिहार्य अचेतन है, कुछ प्रातिहार्य चेतन भी है। आभा मंडल ये भगवान की ही आभा है, व्यवहार ने से उसको चेतन माना जाएगा, और कुछ प्रातिहार्य अचेतन है जैसे सिंहासन, कुछ प्रातिहार्य चेतना चेतन है, मिश्र है, जैसे पुष्प वृष्टि, देवलोक भी हैं उस पुष्प वृष्टि में और फिर पुष्प भी हैं, पुष्पों की बरसात हो रही है, नगाड़े दुंदुभी, वो अपने आप थोड़ी बचते हैं, देव दुंदुभी कहते हैं उनको, और चमर, चमर अपने आप हवा में ऊपर नीचे होते हैं क्या? नहीं, एक और नागकुमार, दूसरी और नागकुमार यक्ष, नागकुमार नागकुमार या नाग यक्ष, यक्षियां होती है चमर पकड़े हुए। तो सारे प्रातिहार्य पूज्य होते हैं, और पूज्य होते हैं तो उसमें जो देव सम्मिलित है उनको अपन अलग से कौन से गुणस्थान वर्ती है, ये सब विचार किए बिना प्रातिहार्य मात्र होने से पूज्य समझकर पूजते हैं। तो इसी तरह जिन शासन देवता भी जो हैं वो भगवान के शासन के अभिन्न घटक होने के कारण उस सत्कार के पात्र होते हैं। तो इस तरह ये आपके प्रश्न का कई दिनों में पूर्ण होने वाला समाधान था। इसमें भी अगर कोई और प्रश्न उठ रहे हो, प्रश्न में भी कभी कभी उपशाखाएं आ जाती है, तो कोई आपत्ति नहीं है। जितना आगम में वर्णन हमारे सामने है वो हम आपके सामने रख सकते हैं। अभी अपन ने कितनी सारी बातें पढ़ी, और तब भी और कई बातें बाकी भी रह गई है जो हम यहां पर एक धारा में चलते हुए आपको जितना बता सके उतना हमने बता दिया, और भी अनेक चर्चाएं इसमें आती है शास्त्रों में। तो इतना पर्याप्त है, या और अगर आपको चाहिए हो तो देख लेना, वरना आज अपना ये विषय यहां पर पूर्ण होता है। जैनम जयतु शासनम। ओम राम रीम रूम रोम रह असि आउसा भगवती सरस्वती देवी देव्यै च देवशास्त्र गुरुभ्यो नर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। एक बात और कह देते हैं कि जो ये कहा जाता है ना कि रागियों की आराधना से संसार बढ़ता है और वीतराग की आराधना से संसार कटता है, घटता है, तो इसमें भी अनेकांत है, क्योंकि अपन केवल वीतराग के आराधक नहीं है। जिनेन्द्र भगवान भले ही वीतराग है, पर जिनवाणी जो है वो न सराग है न वीतराग है, वो वीतरागता की पोषक अवश्य है, वो अचेतन है। और जो गुरुजन है, गुरुजन के दो भेद बताए हैं प्रवचन सार की 245वीं गाथा में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है कि गुरु रागी भी हो सकते हैं और वीतराग भी। जिस गुणस्थान तक राग का उदय है अथवा जिस गुणस्थान तक बुद्धिपूर्वक राग है तब तक सराग है, और जहां वैसा नहीं है वहां वीतराग है। समणा शुद्धुव जुत्ता सुहोव जुत्ता ये होंति समयम्मी तेसुव शुद्धुव जुत्ता निरासवा सासवा सेसा। आचार्य कहते हैं कि श्रमण दो प्रकार के हैं, शुद्धोपयोगी दूसरे शुभोपयोगी। शुद्धोपयोगी निराश्रव है और शुभोपयोगी आश्रव सहित है। और यही कथन उन्होंने ग्रंथ के प्रारंभ में भी किया था, समणा नहीं धम्मेण परिण दप्पा अप्पा जदि शुद्ध संपोग जुदो पावदि निवाण सुहम सुहोव जुत्तो इव सग सुहम। श्रमण दो प्रकार के हैं, अगर वीतराग हो तो निर्वाण सुख को प्राप्त होते हैं, इनको शुद्धोपयोगी कहा है, और यदि सराग हो तो सग सुहम पावधि देवलोक के सुख को प्राप्त होते हैं। तो अभिप्राय ये हुआ कि साधु दो प्रकार के हैं, आप अगर सिर्फ वीतराग को पूज्य मानेंगे तो सारे साधु पूज्य नहीं रह जाएंगे, भले वो परमेश्वरी हैं। चौके में आए हुए साधु वीतराग है कि सराग है? वीतराग नहीं है, नियमतः सराग है, भोजन की इच्छा, वीतरागता कैसे हो सकती है? लेकिन वो पूज्य है कि अपूज्य है? पूज्य है। तो ये अनेकांत है इसमें, इसलिए सुनने में अच्छे लगते हैं कुछ वाक्य, लेकिन सिद्धांत से विचार करने पर, सूक्ष्मता से विचार करने पर कुछ अलग निर्णय होता है। ओम शांति।
एक प्रश्न है,
हाँ जी, ये इनकी प्रतिमाएं वहां अकृत्रिम चैत्यालयों में होती है, तिलोय पंडित में बताया है। और सरस्वती जो है उनका वर्णन बहुत लंबा वर्णन है, हमें लगता है कि एक व्याख्यान पूरा सरस्वती के वर्णन में निकल जाएगा। देवी की आकृति वाली सरस्वती का वर्णन एक व्याख्यान मांगता है। वहां पर देवी की आकृति में सरस्वती होती है अकृत्रिम चैत्यालयों में, और वो देवगति की देवी नहीं है, वो जिनवाणी मां का आकार है। और उस आकार को वीरसेन आचार्य महाराज आदि बड़े बड़े महान आचार्यों ने नमस्कार किया है। देखो जय धवला के मंगलाचरण में चौथी गाथा में वीरसेन आचार्य महाराज क्या लिखते हैं, बारह अंगंगीजा नहीं अंगंग बज्झ निम्मी अणाई मज्झंत निम्मलंगाए सुय देवय अंबाए नमो सया चक्षुमई आए। अंग और अंग बाह्य से रचित है अनादि निधन शरीर जिसका, सरस्वती माता का वर्णन है, निर्मल शरीर जिसका, अंग और अंग बाह्य से रचित है अनादि निधन निर्मल शरीर जिसका, ऐसी श्रुत देवी अर्थात सरस्वती माता के लिए मैं वीरसेन आचार्य सदा नमस्कार करता हूं। कैसी है सरस्वती माता? चक्षुमयी आए, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए रूपी नेत्रों वाली, सुंदर आंखों वाली है, उनको मैं मां को नमस्कार करता हूं। वीरसेन आचार्य नमस्कार कर रहे हैं। धवला ग्रंथ के मंगलाचरण में वीरसेन आचार्य कहते हैं, बारह अंग गिज्झा वियलिय मल मूढ़ दंसणु तिलया विविहवर चरण भूसा पसियौ सुय देवया सुइरम। आचार्य सरस्वती माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माता, हे मातः, हम पर आप हमेशा प्रसन्न रहना, अर्थात हम हमेशा आनंद पूर्वक आपका स्वाध्याय करते रहें, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप कैसी हैं? तो आचार्य कहते हैं बारह अंग गिज्झा, जिनवाणी के जो बारह अंग है उसके द्वारा आप ग्राह्य हैं। और कैसी हैं? वियलिय मल मूढ़ दंसण उत्तिलया, मल सम्यक दर्शन के अतिचार और सम्यक दर्शन की मूढ़ता आदि से रहित निर्मल सम्यक दर्शन ललाट का तिलक है सरस्वती माता के। और विविह वर चरण भूसा, अनेक प्रकार के चारित्र ही जिनके आभूषण हैं, ऐसी सरस्वती देवी, सरस्वती माता चिरकाल तक हम पर प्रसन्न बनी रहे, ये प्रार्थना की है। ये एक बड़ा विषय है, समझने योग्य है। तो ये सरस्वती माता वहां पर भगवान के अकृत्रिम चैत्यालयों में उनके पास में रहती है। इसी तरह लक्ष्मी माता भी रहती है, लक्ष्मी देवी भी रहती है, महालक्ष्मी। वो केवल ज्ञान की मूर्ति है। और सरस्वती और लक्ष्मी इनकी भी रक्षक देवियां हैं, श्रुत रक्षिका। अब कितना वर्णन है, बारीकी से जाए शोध करें तो पता चलेगी शास्त्रों में कितना कुछ भरा हुआ है। इसलिए अपन अधूरे अध्ययन के साथ कोई भी टिप्पणी या निर्णय नहीं ले सकते। जय नम जय तुशासनम।